समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास, और खेल के मैदान की खबरों पर भी हमारी हर नजर रहेगी। और डेडलाइन में बात करेंगे हम आज परीक्षा पे चर्चा पे, और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। आज के अंक में मैं हूं विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन नमस्कार।
नमस्कार विनय, एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। वेल, दिस इज शगुन चोपड़ा विद विनय हियर, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड ऑल्सो रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड ट्रिब्यूट्स एंड अ लॉट मोर अदर स्टफ विच आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, सो यू हैव टू कीप ट्यून्ड इन। सो
मेक श्योर लिसनर्स,
राइट, सो मेक श्योर लिसनर्स टू स्टिक अराउंड टिल द एंड over the next 30 minutes with us, but first we'll start with the headlines.
Delhi ke upracharyapal VK Saxena ne Delhi Vidhan Sabha bhang ki, mukhyamantri Atishi ne apna istifa saunpa.
CAG report on AAP government to be tabled in Delhi Assembly's first session, says Prime Minister Narendra Modi.
Chhattisgarh ke Bijapur jile mein suraksha balon ke sath mutbhed mein 31 naxali mare gaye.
US asks Hamas to release all remaining Israeli hostages immediately.
और भारत इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा वनडे मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में जारी।
And today it's time for our segment Dateline India, and we will be taking a look at the developments which are taking place at the national and global level. And today, as Vinay told you in the beginning of the program, we will be talking about परीक्षा पे चर्चा। We'll have our own charcha over here about examinations, right?
Jitna pressure dala jata hai bachcho pe.
Right. And examinations, as you are saying, they are often a source of stress for students, also for their families. And if you need a quick shot of motivation and encouragement before you dive back into studying for your exams, then make sure listeners to keep listening to us in this particular segment. Well, there is this initiative which we were going to talk about, Pariksha Pe Charcha, by Prime Minister Narendra Modi. And this has been transforming the narrative. The 8th edition of the program, scheduled for 11 a.m. tomorrow, will once again serve as an interactive platform where the Prime Minister will directly engage with students, teachers and parents as well. Each edition of Pariksha Pe Charcha highlighted innovative approaches to tackle exam-related anxiety, fostering a celebratory attitude towards learning and life.
शगुन, आजकल परीक्षा जब होती है तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप के थैरे की परीक्षा होती है,
राइट?
खैर, पिछले एक वर्ष में यह विशाल कार्यक्रम था जिसमें MyGov पोर्टल पर 2.25 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए, जो कार्यक्रम की विशाल लोकप्रियता और प्रासंगिकता को दर्शाता है। ये पहली बार था जब 100 छात्र एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों से आए थे, जो इस पहल की समावेशिता को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है, जिसमें लगभग 3,000 लोग शामिल हुए, जिनमें छात्र, शिक्षक, माता पिता और कला उत्सव के विजेता थे।
Well, I would like to add, Vinay, here that examinations, actually, they are part of the education system. And education is not about just passing an exam. Well, education is about learning. It's about gaining knowledge.
ये continuous process है.
Right. And it has to be, you know, attended to. And it has to be, like, we have to give exams for declaring that we know what we have been taught.
हम तो हमेशा exam देते रहते हैं जीवन में, चलता
रहता है. Right. The exam of life.
Yes.
And now talking about the program again, tomorrow's program has already set a new benchmark. With over 5 crore participation, this year's program exemplifies its status as a Jan Andolan, inspiring collective celebration of learning. This year, 36 students from all states and union territories have been selected from state or union territories' board government schools, Kendriya Vidyalay, Sainik School, Eklavya Model Residential School, CBSE and Navodaya Vidyalay. Pariksha Pe Charcha 2025 will feature 7 insightful episodes, bringing together renowned personalities from diverse fields to guide students on essential aspects of life and learning. So each episode will address key themes which will be chosen specially.
Bilkul. खेल और अनुशासन के क्षेत्र में एमसी मैरीकॉम, अवनी लिखारा और सुहास यतिराज लक्ष्य की प्राप्ति, संकल्प शक्ति और अनुशासन के माध्यम से तनाव पर नियंत्रण को लेकर चर्चा करेंगे। दीपिका पादुकोण मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और आत्म अभिव्यक्ति के महत्व पर जोर देंगी। खान पान की आदतें, नींद, समग्र कल्याण और पोषण के एपिसोड में विशेषज्ञ सोनाली सबरवाल, रुजुता दिवेकर और रेवंत हेमंत सिंगा अपने विचार रखेंगे। गौरव चौधरी और राधिका गुप्ता तकनीकी उपकरणों के उपयोग और वित्तीय साक्षरता पर विचार रखेंगे। विक्रांत मैसी और भूमि पेड़नेकर छात्रों को सकारात्मकता को बढ़ावा देने और नकारात्मक विचारों को से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। माइंडफुलनेस और मानसिक शांति एपिसोड में सदगुरु मानसिक स्पष्टता और फोकस के लिए व्यवहारिक माइंडफुलनेस तकनीकों पर परिचय देंगे। इसके अलावा यूपीएससी, आईआईटी जेईई, क्लैट, सीबीएसई, एनडीए, आईसीएसई और पिछले परीक्षा पे चर्चा के प्रतिभागी ये साझा करेंगे कि इन प्रतियोगिताओं की तैयारी ने उनकी मानसिकता को कैसे राह दिखाई। शकुन, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि डिफरेंट फील्ड से लोग आएंगे और बच्चों को गाइड करेंगे अलग अलग चीजों के बारे में।
There will be different opinions and they can, you know, take decisions accordingly.
बिल्कुल.
According to the various
चाहे वो खेल हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो competitive exam की तैयारी हो या सिर्फ 12th or 10th के exams हो.
And Vinay, that is, you know, the reality. Examinations are an integral part of the education system and they play a crucial role in development of a student's knowledge and their skills in enhancing their skills.
ऐसी prominent personalities जब guide करेंगी तो आदमी को बहुत अच्छी राह देखने को मिलती है।
Right. And this is where Pariksha Pe Charcha comes in as it helps students to understand the importance of exams and provides them with strategies and techniques to manage their stress and perform to the best of their abilities. Now, Vinay, if I may, I will just add one key highlight of Pariksha Pe Charcha. It is the interaction between students and experts which allows students to ask questions and also seek advice on a variety of topics, as you were talking about it, which are related to exams and the very important stress management related to exams.
और शगुन, एक चीज ये भी है कि छात्र मन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है कि मैंने स्कूल के दिनों में इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ बात की और उन्होंने मुझे इस पे गाइड किया, तो एक जीवन भर का अनुभव हो जाता है।
Right, and they will be, you know, completely relaxed about the exams whenever they are going to appear for it, right? Because of this. And this event also includes presentations by experts on various aspects of exams, such as preparing for exams, the time management, and how to handle exam anxiety.
और वो अपना अनुभव भी साझा करते हैं.
Right. Also, well, if we are talking about it, let me tell you one more thing, that this event aims to provide a platform for students so that they can share their own experiences and their challenges freely related to exams, and also they can receive guidance and advice from the experts on dealing with the very very essential stress and anxiety management thing.
और जो सबसे अच्छी बात वो बताते हैं, वो बताते हैं कि exam is not the end, it is the beginning.
Exactly, you're very right about it. And in conclusion, Pariksha Pe Charcha is a valuable platform for students, teachers and parents to discuss the importance of exams and to learn how to manage exam stress and anxiety. It helps students to understand the role of exams in their overall development and to perform to the best of their abilities while also providing a forum for open and honest discussions on the challenges and experiences related to the examinations.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Right, Vinay, we will start with World Book Fair. The 52nd edition of the World Book Fair, which is underway at Bharat Mandapam in New Delhi, it will culminate today. The 9-day event was inaugurated by President Draupadi Murmu and was organized by the National Book Trust and the India Trade Promotion Organization. Our correspondent reports that the fair brought nearly 2,000 publishers and 1,000 speakers.
The 52nd chapter of the Mega Book Fair will come to an end today. This year, the fair exhibited under the theme of We the People of India, commemorating 75 years of the Republic of India, with Russia being the focus country. The 9-day event hosted more than 50 countries, including France, Argentina, Spain and Colombia, besides bringing together nearly 2,000 publishers and 1,000 speakers. From educational books and novels to biographies and comic books, the fair showcased a plethora of books from different genres. Author discussions, book launches, literary sessions, cultural programs, among others, added to the experience of the visitors. Talking to Akashwani News, a visitor named Chandan shared his experience on exploring the Grand Fair of Books.
मेरा नाम चंदन है, मैं दिल्ली से हूँ. अनुभव बहुत अच्छा रहा और हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पे. हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, उसके विकास के लिए पुस्तक मेला अच्छा है बहुत. मैंने बहुत सारे लेखकों की किताबों को खरीदा है, जैसे डार्क हॉर्स है और भी बाकी सारे काफी सारी किताबें. ये किताबें जो हैं ये एक्चुअली में उपन्यास हैं और मतलब व्यंग्य पे आधारित हैं. कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको मतलब पढ़ के आदमी बोर नहीं होता, इंटरेस्टिंग किताबें हैं मतलब यहाँ पे बहुत.
द इवेंट हैज केप्ट इट्स पॉपुलैरिटी फर्म विद अ लार्ज फुटफॉल इवन ऑन इट्स लास्ट डे. अक्षित वैद्यान फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली.
और शकुन, जो लोग अब तक नहीं होके आए हैं उनको हम बता दें कि कल बुक फेयर खत्म हो रहा है तो वो जा सकते हैं.
डेफिनेटली दे शुड गो.
और अब हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पहली बार सरकारी स्कूलों के 50 मेधावी विद्यार्थियों को कंबोडिया और सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण के लिए भेजा है. ये बच्चे वहां की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को जान पाएंगे. एक रिपोर्ट.
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया है. इनमें 11वीं और 12वीं कक्षा के वे विद्यार्थी शामिल हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेधावी बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने विदेश भ्रमण करवाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को टैबलेट और किट भी वितरित की.
सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है और जिन्होंने गाँव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया और धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे.
शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी एक्सपोजर विजिट को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा और अनुभव प्राप्त हो सके.
तो ये हमारे बच्चे मेरिटोरियस है, ये सिंगापुर जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे. कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां भारत वर्ष का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है और सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर बहुत अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था सिंगापुर में है. तो ऐसी जगह पर जाकर के बच्चे स्टूडेंट्स के साथ मिलेंगे, स्कूल्स देखेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ के एक सिस्टम को देखेंगे, वहाँ की स्वच्छता को देखेंगे, अच्छी बातें सीख करके आएंगे.
प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन बच्चों के साथ अभिभावक के रूप में विदेश भ्रमण पर गए हैं. विदेश भ्रमण को लेकर ये बच्चे बेहद खुश दिखे.
मेरा नाम गीतांजलि है. बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीजें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा. बहुत सारी चीजें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, हर इंसान से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एवरीथिंग. वो पूरा कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया कहाँ पे है और जो सीखेंगे वो बाकियों को भी बताएंगे. फिर
मेरा नाम शेर ठाकुर है, मैं ऊना से आई हूँ. पहले तो हमें पता है कि हमने परसेंटेज ले ली तो उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनविलेबल है. अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि ये बच्चे सीरियसली लेते नहीं पढ़ाई को. अब सर लेके जा रहे हैं हमें टूर पे तो हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ पढ़ाई भी कुछ चीज, पढ़ाई से सब कुछ मिल सकता है.
मेरा नाम प्रियांशी है. बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था. मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है.
कंबोडिया और सिंगापुर के दौरे के बाद ये बच्चे 17 फरवरी को स्वदेश लौटेंगे. राज्य सरकार ने इससे पहले 200 शिक्षकों को सिंगापुर की एक्सपोजर विजिट पर भेजा था ताकि दुनिया की बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस को हिमाचल में लागू किया जा सके. राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष दिसंबर में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को भी गोवा भ्रमण के लिए भेजा गया था. निश्चित तौर पर सरकार के इन प्रयासों से शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा. परिक्रमा के लिए शिमला से मैं राजकुमारी चंदेल.
फ्रॉम शिमला लेट्स हेड टू बेंगलुरु. Asia's biggest air show with the theme Runway to 1,000 Opportunities is set to begin in Bengaluru tomorrow. The 5 days aerospace event will see several aviation enthusiasts gathering at a place to witness Atmanirbhar Bharat in defense sector and global players displaying their flying machines in the Indian skies. We have more on this from our correspondent.
Bengaluru is all set for the Aero India show that begins tomorrow. It is a place worth visiting to see the cutting-edge aerospace innovation, explore the largest display of aviation sector, spectacular aerial displays, and a platform to connect with global players. The India Pavilion is showcasing India's growth in fixed-wing and rotary-wing domains, including the future prospects. The highlight is the prototype of the fifth generation stealth fighter aircraft AMCA developed by ADA. It also has on display indigenous aircraft and helicopter platforms. The visitors can see our very own light combat helicopter, light utility helicopter, light combat aircraft, apart from MiG, Sukhois and F-35. The flying display every day is another attraction of the Aero India show. Our own LCA HTT-40 intermediate jet trainer and Sukhoi 30 MKI light combat helicopter and utility helicopter and Surya Kiran aerobatic team will display their design superiority in the sky. The stealth 5th generation fighter aircraft Su-57 of Russia and F-35 of USA have arrived to showcase the technological prowess. Several defense manufacturers, startups and R&D centers have displayed their products and processes in the show. The seminars organized on various core areas such as engine manufacturing, indigenous development of aerospace materials, Make in India and roadmap to Atmanirbharata and Viksit Bharat are the highlights of this Aero India show. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
Aur ab khabrein Mahakumbh se. महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर तीन अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच महाकुंभ मेले में जल जीवन मिशन मंडप लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पैवेलियन में ग्रामीण जीवन पर इस मिशन के प्रभाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण इलाकों में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है।
जल जीवन मिशन मंडप में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुए क्रांतिकारी बदलाव को दर्शाया गया है, जो कभी पानी की कमी के कारण सुर्खियों में बना रहता था। बुंदेलखंड में आज जल जीवन मिशन के कारण सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुकों ने जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा,
मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और पूरी जानकारी हुई कि क्या है हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है।
हर घर नल जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर हर एक व्यक्ति के घर पे नल लगा के जो है जल की व्यवस्था जो बहुत अच्छे तरीके से जो प्रोवाइड कराई, जिसके बाद जो बुंदेलखंड में जल की समस्याएं हुआ करते थे वो काफी हद तक दूर हुई।
जल जीवन मिशन पर बनी प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत विकास और गाँव में सौर ऊर्जा जैसे कई पहलों को दिखाया गया है। इसके अलावा एक डिजिटल कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अपने अपने गाँव में पानी, नल कनेक्शन और जल आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
वेल नाउ लेट्स हेड टू विजयवाड़ा। In Andhra Pradesh, the much-revered Kunadala Mary Mutt Festival has begun today in Vijayawada. This is a prominent pilgrimage festival which promotes the concept of Ekta, fostering sense of oneness among all religions. More on the festival from our Vijayawada correspondent.
The Kunadala Mary Mata Temple is not just a religious shrine, but a historical place that fosters social and communal harmony. The festival began with the Navadina Pradhanalu, a 9-day prayer session. During this festival, devotees of all faiths ascend the hill shrine, holding candles in reverence to the Holy Mary, demonstrating the spirit of togetherness and mutual respect. The festival, concluding on February 11th, offers an inspiring example of how faith, when shared in an inclusive and peaceful environment, can strengthen the bonds of humanity and promote communal integrity. Sai Sishla for Akashwani from Vijayawada.
और श्रोताओं, बात करते हैं खेल खबरों की। सबसे पहले क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज ओडिशा के कटक में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 44 ओवर में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। नागपुर में पहला मैच जीतने के बाद आज भारत का लक्ष्य श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाना है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का मुकाबला बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल हैदराबाद एफसी ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से हराया। एक अन्य मैच में कोलकाता ने चेन्नई एनएफसी को ने ईस्ट बंगाल एफसी को 3-0 से पराजित किया। और उधर शतरंज में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के पहले आयोजन में विश्व चैंपियन डी गुकेश नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई कर गए हैं।
Let's focus on tennis now. In Mumbai Open Tennis Tournament, the Indian Dutch duo of Prathana Tombare and Ariane Hortano will take on the Russian pair of Amina Anshba and Elena Pridanika in the women's doubles finals today. And now more news from defense. Indian Navy's INS Sushil, on her maiden passage around the west coast of Africa, arrived at Port Victoria, Seychelles, for an operational turnaround. India's bilateral engagement with Seychelles is characterized by historical contacts and embodies close friendship, understanding and cooperation. Diplomatic ties were established with Seychelles after its independence in 1976. When Seychelles attained freedom on 29 June 1976, a contingent from INS Nilgiri participated in the Independence Day celebrations. This visit by INS Sushil seeks to advance the strong relationship between the two Indian Ocean region nations.
रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 11 नई पीढ़ी के गश्ती जहाजों और 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की 28 EON 51 प्रणालियों की खरीद की जाएगी। इस अवसर पर 642 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ईओन 51 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल प्रणाली है। इस अनुबंध से 3 वर्ष की अवधि में रोजगार के अवसर सृजित करने और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सहित विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember tribal freedom fighter Telanga Khadia, who was born on 9 February 1806 at Gumla, Jharkhand. Telanga Khadia was well known for his revolutionary thoughts, reasoning skills and dedication to social service. He spearheaded the fight against the British in Chota Nagpur region from 1850 till 1860 against atrocities and land alienation of tribal people. From ages, tribals in Chota Nagpur region had been following the traditional self-governance rule of Padha system, and they were almost free from any kind of outside interference. But this autonomous self-governance rule was disturbed by the regulations imposed by the British during 1850s. Tribals were forced to pay revenue on their own land, which they had been preparing and cultivating for centuries.
Poor people had to lose their land when they were unable to repay loans. Telanga organized people to create awareness among them. He created Juri Panchayat in many villages, which worked as self-governance rule parallel to the British rule. Telanga raised an army of around 1,500 people who were trained in guerrilla warfare. He attacked Britishers, their middlemen, and every other establishment of the British. British government wanted to suppress this uprising by any means, but Telanga was very alert and used to control his operations mostly from hideouts inside the forest. However, once, when Telanga was conducting a meeting at a village Juri Panchayat, the British arrested Telanga and sentenced him to 18 years of imprisonment.
After his release, Telanga revived the struggle against the British. The information about his activities reached the Britishers and they made plans to kill him. On 23rd April 1880, when Telanga Khadia was offering daily prayers, he was shot by a British agent named Bodhan Singh. Escaping Britishers, Telanga's followers buried his body at Soso Neem Tole village of Gumla district. The burial place is known as the Telanga Topa Tand. This place is considered sacred by the people of Chota Nagpur. Every year on this day, his martyrdom is commemorated by the people and a week-long Shaheed Telanga Mela is organized. Telanga Khadia is an inspiration for his bravery, sacrifice and martyrdom. We salute the great freedom fighter.
Jo સહનશીલ થઈ જો જીવે તો સત્ય તણો શણગાર તને ઓ નરવીર સદા મળશે આદરથી માનો પ્યાર તને.
We also remember freedom fighter Manilal Patel, who was born on 9th February 1922 at Pattan district in Gujarat. Manilal, along with his friends, joined the Quit India movement in 1942 during college. He took upon the task to preach the methods of Satyagraha to the people of the neighboring villages around Baroda. On 18th August 1942, after the Satyagraha, they reached Adas railway station to board a train where they saw some policemen approaching them. They were ready to be arrested, but the policemen, without any provocation, opened fire on them. Manilal died of the bullet injuries the same day. We salute the great martyr.
और श्रोताओं, अब बात करेंगे उन हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिन. तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मुरलीधर देवीदास आमटे. कुछ याद आया आपको? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा आमटे की, जिन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों को गरिमा के साथ जीवन जीने की आशा दी, बेघर और विस्थापित आदिवासियों को आशा की किरण दिलाई, और दो बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की. एक बार 1985 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और दूसरी बार 1988 में असम से गुजरात तक. और उन्होंने आनंदवन नामक संस्था की भी स्थापना की, और उन्हें मैगसेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, बिरला पुरस्कार, मानवीय हक पुरस्कार और महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ रॉक एंड रोल म्यूजिशियन, विलियम जॉन क्लिफ्टन हेली. He first popularized rock and roll music in the early 1950s with his group Bill Haley and his Comets, and million-selling hits such as Rock Around the Clock, See You Later, Razzle Dazzle, etc. And in 1987, he was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. And for you listeners, we have this very upbeat song to listen to, Round the Clock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight.
और अब बात करेंगे हम फरहत एज़ेकेल नादिरा, यानी कि हिंदी फिल्म की मशहूर अभिनेत्री नादिरा की. फिल्मी पर्दे पर नादिरा एक सशक्त किरदार निभाते हुए नजर आती थी. 60 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी. नादिरा ने दिलीप कुमार, राज कपूर, मीना कुमारी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन सहित कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया. लाजवाब खूबसूरती और शाहाना अंदाज की शख्सियत के बावजूद उन्हें उस दौर में खलनायिका की भूमिकाओं के लिए चुना गया. उनकी मुख्य फिल्में हैं आन, श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, पाकीजा, जूली, सागर, तमन्ना, इंसाफ का मंदिर, पॉकेट मार, तलाश, धर्मात्मा.
मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के
Now, let's talk about Herman Alexander Simon, scholar whose work influenced the fields of computer science, economics and cognitive psychology. His primary research interest was decision-making with organizations, and he is best known for the theories of bounded rationality. He received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1978.
T. Bala Saraswati, jinhen T. तंजौर बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी. उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और मानद विद्या वाचस्पति आदि अलंकरणों से सम्मानित किया गया था. टी बालास्वती तमिलनाडु से संबंधित थी.
वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरोल किंग. इट्स अ बर्थडे टुडे. सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन. Her success as a performer in her own right did not come until the 1970s, when she sang her own songs, accompanying herself on the piano in a series of albums and concerts. And for you listeners, we have the song It's Too Late, performed by her.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying.
और श्रोताओं बात करेंगे परिमार्जन नेगी की, जो भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी रहे हैं और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। और वो सबसे कम उम्र में उन्होंने तेहरान में एशियाई चैंपियनशिप भी पहली बार जीती थी और अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की थी। और श्रोताओं समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुझे और मेरी सहयोगी शगुन को इजाजत दें कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।